पथिकृत आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचक शुक्ल जी की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं हमारे सम्मुख हैं। आपका सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथ रश्मि मांसा है। आपकी व्यवहारिक आलोचना का प्रौढ़तम रूप तुलसी और जायसी ग्रंथावली की भूमिकाओं, भ्रमर गीत सार की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत विभिन्न कवियों के संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिचयात्मक टिप्पणियों में प्रकट हुआ है। शुक्ल जी की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार भारतीय रसवाद है। शुक्ल जी ने उसे सर्वथा पूर्ण मानदंड माना है। आपने जीवन की क्रियाभूमि, काव्य की भावभूमि और समीक्षा की विचार भूमि में अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया है। आपके सिद्धांत जीवन के अनुभव से गृहित हैं। काव्य के संदर्भ में उनको परखा गया है और अंततः विवेक की कसौटी पर कसकर सिद्धांत रूप में उपस्थित किया गया है। समीक्षा का जो सिद्धांत इन तीनों में सामंजस्य नहीं ला सकता, वह आपको मान्य नहीं। सामंजस्य की यह पूर्णता भारतीय रसवाद में है, ऐसी आपकी मान्यता थी जो कभी बदली नहीं। आचार्य शुक्ल ने रसवाद को आध्यात्मिक भूमि से उतारकर मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। उसे बौद्धिक चिंतन की दृष्टि से अधिक पूर्ण और विश्वसनीय बताया। रस के प्रवर्तक शब्दों का विशद, भावों का सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक विवेचन किया। उनको नए ढंग से परिभाषित और वर्गीकृत किया। भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का अनुशीलन किया और रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करके शेष समस्त मान्यताओं को या तो इसी के भीतर समाविष्ट किया या अप्रासंगिक प्रमाणित किया। वस्तुतः उन्होंने रस सिद्धांत को आधुनिक युग की आकांक्षा के अनुकूल परिभाषित करके पुनः प्रतिष्ठित किया। उनके समीक्षा सिद्धांत एक प्रकार से रस सिद्धांत की व्याख्या के रूप में विकसित हुए हैं। शुक्ल जी ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की समीक्षाओं के माध्यम से रस सिद्धांत की ही प्रतिष्ठा की। उन्होंने सौंदर्यानुभूति पर विचार करते हुए उसे विरसानुभूति के स्तर पर ही समझाने की चेष्टा की। आचार्य शुक्ल के आलोचक रूप को समझने के लिए उनके समीक्षा सिद्धांतों पर थोड़ा विस्तार से विचार करना होगा। आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत। आधुनिक हिंदी समीक्षा के विकास क्रम में आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व अनेक दृष्टियों से अप्रतिम है। वे सच्चे अर्थों में एक पथिकृत आचार्य हैं। उच्च कोटि की समीक्षा के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वीक्षण बुद्धि और मर्मग्रहण प्रज्ञा अपेक्षित है। आचार्य शुक्ल के आलोचक व्यक्तित्व में उपर्युक्त तीनों ही विशेषताओं का सामंजस्य लक्षित होता है। वे हिंदी के पहले आलोचक हैं जिन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र की अतल गहराई में प्रवेश करके उसकी महत्ता, सार्वत्ता, व्यापकता और उपयोगिता के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने घोषित किया कि यूनाइटेड कामा शब्द शक्ति, रस और अलंकार ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। इनोटेड कामा। उनका कहना था कि इनोटेड कामा, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों के दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। इनोटेड कामा। अपनी दृष्टि या भारतीय दृष्टि के सम्यक बोध के लिए उन्होंने नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, काव्यालंकार, अभिनव भारती, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, दशरूपक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, रसतरंगिणी, रस गंगाधर आदि अनेक ग्रंथों का अनुशीलन किया था। उनका कहना था, रस निरूपण पद्धति का आधुनिक मनोविज्ञान आदि की सहायता से खूब प्रसार और संस्कार करना पड़ेगा। इस पद्धति की नींव बहुत दूर तक डाली गई है। कहना न होगा कि इस नींव की गहराई का अनुभव उन्होंने स्वयं भली भांति किया था और आधुनिक मनोविज्ञान की सहायता से उन्होंने उसे व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित करने की भी चेष्टा की थी। रस सिद्धांत के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल ने रीति, अलंकार, ध्वनि, गुण, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांतों का अध्ययन भी किया था, किंतु काव्य में इनकी स्थिति उन्हें वहीं तक मान्य थी जहां तक ये रस के पोषक, उपकारक, आश्रित या रक्षक बनकर उपस्थित हो। उनके अनुसार काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है, अलंकार उसके बाह्य स्वरूप है, रीति केवल संघटना है, शरीर का अंग विन्यास है, रस और गुण का संबंध अन्वय व्यतिरेक संबंध है, ध्वनि भी काव्य की आत्मा नहीं है क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति दोष है, इसमें अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि भी आ सकती है। वक्रोक्ति भी काव्य में रसाश्रित होकर रसात्मक होती है, स्वतंत्र रूप में नहीं। औचित्य रस का रक्षक है, उसकी अनुपस्थिति में रस रसभास के स्तर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल की समीक्षा का आधार भारतीय रस सिद्धांत है। रस की परिभाषा करते हुए आचार्य ने कहा, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 189। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है, काव्य में रहस्यवाद। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, रस मीमांसा। उपरोक्त परिभाषाओं से प्रकट है कि शुक्ल जी की दृष्टि में हृदय की मुक्तावस्था, प्रभावित होने की दशा, लोक हृदय में लीन होने की दशा और अनुभूति दशा लगभग एक ही है। यह मन दशा तक पहुंचना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। यह गोचर जगत के अनेक रूपात्मक है और मानव हृदय अनेक भावात्मक। इन आंतरिक भावों और बाह्य रूपों में सामंजस्य स्थापित करने में ही कवि की काव्य साधना की सार्थकता मान्य हो सकती है। इस सामंजस्य के द्वारा ही, अर्थात भावों के अनुकूल विषय और विषय के अनुकूल भाव का चित्रण करके ही कवि अपने कर्म विधान को पूरा करता है। शास्त्रीय दृष्टि से इसे ही आलंबन और आश्रय को यथोचित प्रतिष्ठा कहा जा सकता है। आश्रय तो कोई सहृदय मनुष्य ही हो सकता है, किंतु आलंबन रूप में हम मानव तथा मानवेतर समस्त चराचर का चित्रण कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि पहले तो कवि स्वयं इस अनेक रूपात्मक जगत के मार्मिक तथ्यों में अपने हृदय को लीन करता हुआ अनुभूति ग्रहण करता है और फिर कल्पना द्वारा अपनी उस मनोभूति को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति तीन प्रकार से हो सकती है। पहला, जहाँ आलंबन मात्र का विशद वर्णन किया जाए। दूसरा, जहाँ आलंबन उपेक्षित हो और कवि केवल भाव व्यंजना में ही लीन हो। आचार्य शुक्ल इसे भाव प्रदर्शक काव्य कहते हैं और आधुनिक गीत मुक्तकों को इसी कोटि में रखते हैं। तीसरा, जहाँ आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव सभी चित्रित हो। आचार्य शुक्ल ने आश्रय, आलंबन, उद्दीपन इन तीनों को ही विभाव के अंतर्गत रखा है। अनुभव आश्रय की चेष्टाएं हैं। उन्होंने इस विभाव पक्ष को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि रस का आधार खड़ा करने वाला तत्व तो यही है। वे तो यहाँ तक कहते हैं, मैं आलंबन मात्र के विषय वर्णन को श्रोता में रसानुभाव उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की एकत्र स्थिति होने पर भी रस परिपाक होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी इनको एकत्र करके रस की शर्त पूरी की जाती है। रस परिपाक के लिए मूल वस्तु है विभाव विधान। इसमें कवि को पूरी सतर्कता बरनी चाहिए। विभाव में आलंबन प्रधान वस्तु है। आलंबन का लोकधर्मी होना नितांत आवश्यक है। उदाहरण के लिए वीरस की निष्पत्ति के लिए आलंबन रूप में ऐसे वीर पुरुष का चित्रण करना अधिक उचित होगा जिसकी वीरता लोक विस्तृत एवं लोक समर्थित हो। इसी प्रकार रौद्र रस के वर्णन में आलंबन का चित्रण इस रूप में होना चाहिए कि वह मनुष्य के क्रोध का पात्र हो सके। आलंबन के लोकधर्मी होने पर भी विधान विभाव की पूर्णता मानी जा सकती है। विभाव विधान की महत्ता और आलंबन के लोकधर्मी स्वरूप की अनिवार्यता पर बल देते हुए भी आचार्य ने पूर्ण रस व्यंजना के लिए कवि, आलंबन तथा सहृदय तीनों की अनुभूतिक एकता को आवश्यक माना है। वे कहते हैं, इनोटर कामा, जहाँ आचार्यों ने पूर्ण रस माना है वहाँ तीन हृदयों का समन्वय चाहिए। आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम तो कवि में चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में और फिर श्रोता या पाठक में। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण कहा गया है वह तभी चरितार्थ हो सकता है। यूनाइटेड कॉमन, जो लोग यह समझते हैं कि आचार्य शुक्ल ने केवल आलंबनत्व धर्म के साधारणीकरण की बात कहकर कवि और पाठक के पक्ष की उपेक्षा की है, उन्हें उपर्युक्त कथन पर ध्यान देना चाहिए। आलंबन के लोकधर्मी स्वरूप पर बल देने के कारण यह था कि आचार्य शुक्ल उसे ही कवि हृदय में अनुभूति का उद्रेक करने वाला तत्व मानते थे। तुलसी के हृदय में राम भक्ति का उद्रेक सीतापति के शील स्वभाव को देख सुनकर ही हुआ और वे चाहते थे कि सबके हृदय में वैसी ही अनुभूति हो। आदि कवि वाल्मीकि ने भी नारद द्वारा इक्ष्वाकु को कुलोद्भव राम की लोक विश्रुत गाथा सुनकर और उससे अभिभूत होकर रामायण में उनकी लोकधर्मी चरित्र की अवधारणा की थी। कवि भूषण के चित्त को काव्याभिमुख होने करने वाला प्रेरक तत्व शिवचरित ही था। जिस प्रकार उपासक के लोक पावन विरुद्ध से आकृष्ट होकर उपासक उसके स्वरूप को अपने हृदय को लीन करने के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार आलम्बन का लोक समर्थित व्यक्तित्व कवि हृदय को प्रेरित करके उसे कवि कर्म में लीन करता है। श्रोता या पाठक भी ऐसे ही लोक धर्म या आलम्बन के प्रति निष्ठावान होकर उसके साथ अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करता है। कवि जब अपने तपबल से जिस किसी आलम्बन को सहृदय पाठक के हृदय में प्रविष्ट कराना चाहेगा तो उसकी स्थिति त्रिशंकुवत होगी। रस की मध्यम और निकृष्ट कोटियां। काव्य में ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब हम आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ अर्जुन जब सहसा युधिष्ठिर पर क्रुद्धांत होकर दौड़ पड़ते हैं, या रावण जब सीता के प्रति क्रोध व्यक्त करता है, तब न तो हमारा तादात्म्य अर्जुन के साथ होता है और न रावण के साथ ही। ऐसी स्थिति में हम उन पात्रों के शील दृष्टा मात्र होते हैं। शास्त्रों में ऐसी स्थिति में रसाभास माना गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे रस की मध्यम कोटि कहते हैं। वस्तुतः आचार्य शुक्ल ने रसाभास, भावाभास आदि की स्थिति में व्यक्त होने वाले भाव को कवि की सहज अनुभूति न मानकर आरोपित माना है। उदाहरणार्थ सीता के प्रति रावण का क्रोध तुलसी की सहज अनुभूति का परिणाम न होकर आरोपित है। ऐसे स्थलों पर अनौचित ज्ञान के कारण कवि व्यक्त भाव के प्रति उदासीन रहता है। रस की मध्यम कोटि के भीतर आचार्य शुक्ल ने भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति, भाव दशा, शील दशा तथा विभावानुभाव सहित संचारी भावों के स्वतंत्र वर्णन को भी स्थान दिया है। इन स्थितियों द्वारा व्यक्ति की अंत प्रकृति की विलक्षणता व्यक्त होती है। अतः इसे रस के अंतर्गत समाविष्ट करने से व्यक्ति वैचित्र या शील वैशिष्ट को महत्व देने वाले काव्यों की समीक्षा भी रस दृष्टि से की जा सकती है। इस मध्यम कोटि की रसानुभूति का उल्लेख करते हुए शुक्ल जी ने कहा भी है, इनोटेड काम, अंत प्रकृति के वैचित्र प्रदर्शन की दृष्टि से लिखे हुए पाश्चात्य नाटक में इसी प्रकार की अनुभूति होती है, इनोटेड काम। आचार्य शुक्ल रस की निकृष्ट कोटि भी मानते हैं और चमत्कारवादियों की कुतूहल वृत्ति को उसके अंतर्गत स्थान देते हैं। रस की इन तीनों कोटियों की स्थापना आचार्य शुक्ल को कदाचित इसलिए करनी पड़ी कि वे सभी प्रकार के काव्यों की समीक्षा रस दृष्टि के आधार पर ही करना चाहते थे। रस की मध्यम कोटि की स्थापना शील वैचित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए और निकृष्ट कोटि की स्थापना चमत्कार प्रधान काव्यों की समीक्षा के लिए की गई है। इन दोनों कोटियों की प्रेरणा भी आचार्य की कुछ प्राचीन मुनियों की काव्य मीमांसा से ही मिली थी। रस की मध्यम कोटि तो प्राचीन आचार्यों का रसाभास ही है। निकृष्ट कोटि की प्रेरणा के मूल में संभवतः प्राचीनों की अधम काव्य संबंधी धारणा है। रूप विधान। काव्य में विभावादि का रूप विधान कल्पना द्वारा होता है। कल्पित रूप विधान ही रसोद्बोधन में समर्थ होता है। आचार्य शुक्ल की स्थापना यह है कि प्रत्यक्ष रूप विधान और स्मृत रूप विधान द्वारा भी रसानुभूति हो सकती है और होती है। प्रत्यक्ष रूप विधान के संबंध में आचार्य शुक्ल का कहना है कि इनवर्ट कामा, जिस प्रकार काव्य में वर्णित आलम्बनों की कल्पना में उपस्थित होने पर साधारणीकरण होता है, उसी प्रकार हमारे भावों के कुछ आलम्बनों के प्रत्यक्ष सामने आने पर भी उन आलम्बनों के माध्यम में संबंध में लोक के साथ या कम से कम सहृदयों के साथ हमारा तादात्म्य रहता है। अपनी मान्यता की पुष्टि में उन्होंने लोक कल्याणकारी विकट कर्म के प्रति व्यक्त उत्साह, लोक पीड़क आदि प्रति व्यक्त क्रोध पर पीड़ा देखकर गरजने वाली करुणा तथा प्राकृतिक दृश्यों को देखकर क्रुद्ध होने वाली मधुर भावना की रसात्मकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी दृष्टि में यूनाइटेड कामा, रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा पृथक होती कोई अंतर्वृत्ति नहीं है, बल्कि उसी का एक उदात्त और अवदात्त स्वरूप है, यूनाइटेड कामा। इसी प्रकार आचार्य शुक्ल अतीत में वास्तविक रूप में जटिल वृत्तों और व्यापारों की स्मृति को भी रसात्मक मानते हैं। उनके अनुसार रति हास और करुणा से संबद्ध स्मरण रसात्मक बोध उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। प्रिय का स्मरण, बाल्यकाल या यौवन काल के अतीत जीवन का स्मरण, प्रवास में देश के स्थलों पर स्मरण ऐसा ही होता है। प्रत्यभिज्ञान या प्रत्यक्ष मिश्रित स्मरण तथा इतिहास एवं शुद्ध अनुमानाधृत स्मरण भी रसात्मक होता है। यह स्मृत रूप विधान तो एक प्रकार से कल्पित रूप विधान ही है, अतः उसके रसात्मक होने की बात मान्य हो सकती है, किंतु प्रत्यक्ष रूप विधान में हृदय का सर्वथा मुक्त होना और सत्व का उद्रिक्त होना सहज संभाव्य नहीं है। रसानुभूति को प्रत्यक्षानुभूति से नितांत भिन्न न मानने के कारण आचार्य शुक्ल रसानंद को सुख दुखात्मक कोटि का ही मानते हैं। उनके अनुसार मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य भूमि है। व्याकरण अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रियों और मन को भी मनोमय कोश कहा जाता है। आनंदमय कोश की अनुभूति न होने के कारण ही काव्यानुभूति लोकोत्तर नहीं है। फिर भी लोक की अनुभूति के समय सदैव हमारा हृदय अपने व्यक्ति योगक्षेम की भावना से मुक्त नहीं होता, जबकि रसानुभूति या काव्यानुभूति काल में वह इससे मुक्त होता है। इसलिए काव्यानुभूति सुख दुख की भावना से परे मानसिक आनंद का विधान करने वाली होती है। सौंदर्यानुभूति, आचार्य शुक्ल ने सौंदर्यानुभूति को भी रसानुभूति के स्तर पर ही देखा है। उनका कहना है, इनोटेड कामा, कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता ही यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इनोटेड कामा, यह तदाकार परिणति ही रसमग्नता है। आचार्य शुक्ल लोक की सामान्य भूमि और सामान्य हृदय की स्थिति की भांति ही सौंदर्य के सामान्य आदर्श की स्थिति भी मानते हैं। इस प्रकार भी उसी आत्यंतिक वस्तुनिष्ठता और आत्यंतिक व्यक्तिनिष्ठता के बीच लोक सामान्य धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं। सौंदर्यानुभूति को भी मंगल विधायनी मानते हैं। उनके अनुसार नोटेड कामा, तुलसी और सूर ऐसे सगुणोत्पासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। रूपाकृति के सौंदर्य के साथ ही विकर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य या शील सौंदर्य की मार्मिक चर्चा भी करते हैं। सौंदर्य भावना की सर्वांग पूर्णता के लिए वे मानव की रूप विभूति तथा शील सौंदर्य के साथ ही वातावरण के सौंदर्य विधान को भी आवश्यक मानते हैं। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल गत्यात्मक सौंदर्य की स्थिति ही स्वीकार करते हैं। सौंदर्य और मंगल उनकी दृष्टि में पर्याय है। ब्रह्म की व्यक्त सत्ता अर्थात जगत में सुंदर और असुंदर या मंगल और अमंगल का द्वंद्व नित्य और अनिवार्य है। सृजन, प्रफुल्लता, हासविलास, रक्षा, रंजन आदि सौंदर्य पक्ष की वस्तुएं हैं और विरूपता, क्लेश, ध्वंस आदि असुंदर पक्ष की। इन दोनों के द्वंद्व में ही सौंदर्य की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। अत्याचार, क्रंदन, पीड़न आदि की विरूप और अमंगलमयी छाया को हटाकर ही ब्रह्म की सत्ता वास्तविक सौंदर्य का प्रकाश करती है। आचार्य के शब्दों में नोटेड कामा, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। इनोटेड कामा, असौंदर्य के आवरण को हटाकर सौंदर्य की प्रतिष्ठा ही आनंद की साधनावस्था है। आनंद की सिद्धावस्था एक प्रकार की निष्क्रियता या गतिहीनता की अवस्था है। कथ्यात्मकता के अभाव में वास्तविक सौंदर्य की स्थिति मान्य नहीं हो सकती है। काव्य के क्षेत्र में भी यह आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था लक्षित की जा सकती है। रामायण, महाभारत आदि काव्य आनंद की साधनावस्था के काव्य हैं और गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, फुटकल श्रृंगारी काव्य, अधिकांश शैवादी कविताएं आदि आनंद की सिद्धावस्था के काव्य हैं। कहना न होगा कि आचार्य शुक्ल ने पूर्ण सहानुभूति की शक्ति आनंद की साधनावस्था वाले काव्य में ही स्वीकार की है, क्योंकि ऐसे ही काव्यों में आलम्बन सौंदर्य के आवरण को हटाकर लोक रक्षा में रत रहता है और उसका स्वरूप लोकधर्मी होता है। रस विरोधी सिद्धांतों का विरोध, आलंबन के लोकधर्मी स्वरूप और रस सिद्धांत के प्रति अटूट निष्ठा के कारण ही आचार्य शुक्ल ने उन सारे काव्य सिद्धांतों का विरोध किया जो इससे भिन्न मान्यताओं पर आधारित थे। आचार्य ने सांप्रदायिक रहस्यवाद और असंबंध भावनाओं को लेकर चलने वाले तथा उपमान वाक्यों का ढेर लगाने वाले छायावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद, अंतश्चेतनावाद, व्यक्ति वैचित्रवाद, मूर्तिमत्तावाद, प्रतीकवाद, संवेदनावाद तथा टॉल्स्टॉय के आदर्शवाद का विरोध किया है। परोक्ष रति पर आधारित होने के कारण आचार्य शुक्ल को रहस्यवादी कवि की अनुभूति की सच्चाई पर ही विश्वास नहीं है। छायावाद, कलावाद और अभिव्यंजनावाद आचार्य शुक्ल की दृष्टि में प्रस्तुत की उपेक्षा करने वाले सिद्धांत हैं। इनमें अप्रस्तुत विधान पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है। यही मूर्तिमत्तावाद, संवेदनावाद और प्रतीकवाद में भी थोड़े बहुत अंतर से लक्षित होती है। व्यक्ति वैचित्रवाद नकली हृदयों के कारखानों में निर्मित होने वाला वाद है। वह लोक हृदय की सामान्य अंतर्भूमि की मान्यता के विरुद्ध पड़ता है। फ्रायड के अंतर्चेतनावाद से भी वे सहमत नहीं प्रतीत होते। उनकी दृष्टि में क्या व्यानुभूति और स्वप्न की अनुभूति में पर्याप्त अंतर है। टॉल्स्टॉय का आदर्शवाद केवल प्रेम और भ्रातृत्व भाव के उत्कर्ष में ही कला की सार्थकता मानता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार के उत्कर्ष में ही कला की सार्थकता मानता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह एक देशी है। काव्य कला की रमणीयता, पूर्ण सौंदर्य जिसमें परपुरुषता और मधुरता, कठोरता और मृदुता, क्रोध और विनय जीवन के उभय पक्ष सम्मिलित हैं के विधान में है। प्राचीन भारतीय सिद्धांतों में आचार्य शुक्ल ने वक्रोक्तिवाद और चमत्कारवाद का सर्वाधिक विरोध किया है। इसका कारण भी इन सिद्धांतों का रस विरोधी स्वरूप है। काव्य के संबंध में इनसे हल्की धारणा का निर्माण होता है, जबकि आचार्य शुक्ल काव्य को भाव साधना मानते हुए उसे ज्ञान साधना और कर्म साधना के समकक्ष रखना चाहते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा वक्रोक्तिवाद का विरोध तर्कसंगत नहीं है, वक्रोक्ति रस विरोधी नहीं है। कुंतक ने वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता का विवेचन करते हुए रस का सन्निवेश वक्रोक्ति के अंतर्गत कर लिया है। ऐसा लगता है कि शुक्ल जी को वक्रोक्ति सिद्धांत के समग्र अध्ययन का अवसर नहीं मिला था, अन्यथा कि वक्रोक्ति का विरोध न करते। उन्होंने वक्रोक्ति के शाब्दिक अर्थ को विशेष महत्व दिया और उसी के आधार पर अपनी धारणा स्थिर कर ली। आधुनिक सिद्धांतों में आचार्य शुक्ल ने उन सिद्धांतों को स्वीकार किया जिनसे रस सिद्धांत का समर्थन हो जाता है। एबरक्रॉम्बी की प्रेषणीयता का सिद्धांत, एडिसन और कोलरिज का भाव प्रेरित कल्पनावाद तथा रिचर्ड्स का सामान्यकृत अनुभूतिवाद एवं कल्पनात्मक अनुभूतिवाद आचार्य शुक्ल के रस सिद्धांत के मेल में पड़ते हैं। इसी प्रकार रिचर्ड्स का जीवनानुभूति और काव्यानुभूति की एकता का सिद्धांत भी आचार्य शुक्ल की प्रत्यक्ष रूप विधानाधृत रसात्मकता का समर्थक है। इसीलिए शुक्ल जी ने इन सिद्धांतों को अनेक स्थलों पर उद्धृत किया है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल की मूलभूत धारणा यह है कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है। लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का प्रसार होता है। लोक की समस्त अनुभूतियां सुख दुखात्मक होती हैं। मानव जीवन में अनुभूत समस्त भाव सुख दुख मूलक ही है। सुखात्मक भाव में राग या प्रेम प्रधान है, दुखात्मक भाव में शोक या करुणा। अतः जीवन में प्रवृत्त करने वाले बीज भाव प्रेम तथा करुणा ही है। जीवनाधृत महाकाव्यों में भी बीज भाव की स्थिति लक्षित होती है। रामायण का बीज भाव करुणा है। प्रेमाख्यान काव्यों में बीज भाव प्रेम होता है। आनंद की साधनावस्था वाले काव्यों में प्रायः करुणा ही बीज भाव के रूप में विद्यमान रहती है। काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति है। काव्यानुभूति अपेक्षाकृत अधिक उदात्त होती है। आनंद विधान के लिए लोक के बाहर जाना, चाहे वह घट के भीतर हो या क्षितिज के पार, एक प्रकार का पलायनवाद ही है। इस प्रकार समस्त भूतों में एक ही आत्मतत्व की सत्ता मान्य है, वैसी ही मानव मात्र में एक ही सामान्य हृदय की सत्ता भी मान्य होनी चाहिए। इस सामान्य हृदय का उद्घाटन करके कवि अभेद भाव का समर्थन करता है। इस प्रकार मुक्त आत्मा समस्त विश्व में एक ही आत्मा का दर्शन करती है, उसी प्रकार मुक्त हृदय समस्त गोचर जगत में एक ही सामान्य हृदय का प्रसार देखता है। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभूत करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। वास्तविक सहृदय वही है जो संपूर्ण चराचर के साथ अपने हृदय का रागात्मक संबंध स्थापित करके जगत में भाव में रूप में रम जाता है। यही हमारे आदि कवि का संदेश था और आचार्य शुक्ल भी की मूल स्थापना यही है। जगत के समस्त गोचर पदार्थों के साथ हृदय का सामंजस्य स्थापित हो जाने पर यह जगत रूप जगत हो जाता है, जो रस रूप में हो जाता है। कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं कोई चेतन, नहीं कोई जड़ है, सभी में अनिश्चित पावन हृदय है। हृदय में तरंगित सरस भावधारा, यह रस रूप ही है जगत का पसारा। व्यवहारिक समीक्षा। मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित एवं पुष्ट इसी रस दृष्टि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपनी जायसी, सूर और तुलसी की श्रेष्ठ समीक्षाएं प्रस्तुत की है। जायसी की समीक्षा करते हुए आचार्य ने उनके संक्षिप्त जीवन वृत्ति के साथ ही प्रेम गाथा परंपरा, पद्मावत की कथा और इसका ऐतिहासिक आधार, पद्मावत की प्रेम पद्धति, वियोग संयोग पक्ष, प्रेम तत्व और उसकी ईश्वरोन्मुखता, प्रबंध कल्पना, वस्तु वर्णन, भाव व्यंजना, अलंकार, स्वभाव चित्रण, रहस्यवाद, मत और सिद्धांत, सुक्तियाँ और भाषा संबंधी विशेषताओं का गंभीर और विशद विवेचन किया है। उपर्युक्त सभी शीर्षकों के अंतर्गत आचार्य ने कुछ न कुछ नई बातें कही हैं। वस्तु वर्णन के अंतर्गत उन्होंने पहली बार वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने की बात पर बल दिया है। अलंकारों का विवेचन करते हुए उन्होंने कवि की प्रवृत्ति के साथ उनकी प्रयोग बहुलता का संबंध स्थापित किया है। भावों के उत्कर्ष में उनके योगदान पर विचार किया है और अनेक अर्थ छवियों के गूढ़ सन्निवेश में उनकी भूमिका की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उक्तियों का वैशिष्ट्य निदर्शित करते हुए उन्होंने कतिपय उक्तियों के भीतर अप्रस्तुत रूप में दबे हुए रूप विधान को लक्षित करते हुए आधुनिक काव्याभिव्यंजन की दृष्टि से जायसी की गूढ़ रमणीय रूप योजना की प्रशंसा की है। जायसी की काव्य भाषा की चर्चा करते हुए आचार्य ने भाषा के दो पक्षों, सांकेतिक और बिंब विधायक का उल्लेख किया है और यह स्पष्ट किया है कि बिंब विधायक भाषा रस प्रतीति में सहायक होती है। तात्पर्य यह है कि जायसी की आलोचना में आचार्य शुक्ल ने विषय वस्तु की सूक्ष्म परख के साथ ही रूप तत्व पर भी बारीकी से विचार किया है। कहीं कहीं तो उनका विवेचन आधुनिक शैली वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए जायसी की निम्नलिखित चौपाइयों पर आचार्य शुक्ल की समीक्षात्मक टिप्पणियां देखिए। रतन छुआ जिन हाथन सेती और न छुआ सो हाथ संकेती, दमक रंग भय हाथ मजीठी, मुक्ता ले उपय गुगुची दीठी। सबसे पहले तो रतन शब्द में हमें श्लेष मिलता है, फिर दूसरे चरण में काकु वक्रोक्ति और तीसरे चरण में जटिलता है। उस रत्न के स्पर्श से मेरे हाथ लाल हुए। इसका विचार यदि हम गुड़ की दृष्टि से करें तो तद्गुण अलंकार ठहरता है। फिर जब हम विचार करते हैं कि पद्मिनी के हाथ तो स्वभावतः लाल हैं, तब हमें रत्न स्पर्श के रूप हेतु का आरोप करके हेतु प्रेक्षा कहनी पड़ती है। अतः यहाँ इन दोनों अलंकारों का संदेह संकर हुआ है। चौथे चरण में तद्गुण अलंकार स्पष्ट है। यह अलंकार निर्णय भी हमें व्यंग अर्थ तक नहीं पहुँचाता। अतः हम लक्षणा से मुक्त का अर्थ लेते हैं बहुमूल्य वस्तु और गुंगुची का अर्थ लेते हैं तुच्छ वस्तु। इस प्रकार हम इस व्यंग अर्थ पर पहुंचते हैं कि रत्नसेन के सामने मुझे संसार की उत्तम से उत्तम वस्तु तुच्छातुच्छ दिखाई पड़ती है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका पृष्ठ संख्या 113। इस प्रकार का विवेचन काव्य पाठ के गहन अध्ययन से ही संभव है। भावों की विवेचना करते हुए आचार्य ने मात्र उनकी शास्त्रीय स्थिति का ही उल्लेख नहीं किया है, वरन उनके उत्कर्ष, उनकी व्याप्ति तथा मानव चरित्र के साथ उनके संश्लिष्ट संबंध का भी विवेचन किया है। उन्होंने दो पात्रों में एक ही भाव के स्थितिगत वैशिष्ट को भी लक्षित किया है और मिलते जुलते भावों में उनकी तुलना भी की है। प्रेम प्रधान काव्य होने के कारण पद्मावत में निरूपित प्रेम के स्वरूप पर आचार्य ने विस्तार पूर्वक विचार किया है और संस्कृत के महाकाव्यों तथा अरबी फारसी के प्रेम कथाओं से उसका पार्थक्य स्पष्ट किया है। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा है कि जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच बीच में जीवन के और रंगों के साथ भी उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं, जिससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। आचार्य शुक्ल ने जायसी की प्रतिनिधि रचना पद्मावत के काव्य रूप पर भी विचार किया है। उन्होंने घटनाओं की गति, मानव जीवन की पूर्णता और विविधता, घटनाओं के संबंध श्रृंखला, प्रसंगों की मार्मिकता, भावों के परिस्थितिगत अनुकूलता प्रतिकूलता तथा कार्यान्विति की दृष्टि से प्रबंध काव्य की श्रेष्ठता निर्धारित करते हुए जायसी को प्रबंध रचना की दृष्टि से तुलसी के बाद दूसरा स्थान दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पद्मावत अन्योक्ति मूलक काव्य नहीं है। घटनाक्रम के बीच बीच में प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की व्यंजना के कारण इसे समासोक्ति मूलक काव्य कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जायसी के काव्य की व्यवहारिक समीक्षा के साथ आचार्य शुक्ल ने पहली बार विषय वस्तु और रूप तत्व दोनों को समुचित महत्व देते हुए हिंदी की व्यवस्थित समीक्षा पद्धति का आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुण अलंकार शब्द शक्ति इन सब का महत्व व्यंग अर्थ तक पहुँचने में सहायक होने के कारण है। आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की आलोचना करते हुए आलोचना की उसी पद्धति का प्रयोग किया जिसका आदर्श रूप वे जैसी की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपस्थित कर चुके थे। उन्होंने तुलसी की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी लोकधर्मिता, मर्यादा प्रियता और शील साधना का विस्तार से विवेचन किया है। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि तुलसी की भक्ति शास्त्रानुमोदित लोकधर्म के माधुर्य को प्रतिष्ठित करने वाली है और संसार में व्याप्त दुख, अनास्था और निराशा को दूर करके आशा का संचार और मंगल का विधान करने वाली है। वह राम के शील के असाधारण उत्कर्ष पर आधारित है, इसलिए वह सदाचार को महत्व देकर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। राम के स्वरूप में रूप शील के साथ लोकोत्तर सौंदर्य और शक्ति सन्निहित है, इसलिए वे लोक चित्त को सहज आकृष्ट करते हैं और अपने आचरण के द्वारा लोक मंगल का विधान करते हुए मनुष्य की पूर्णता के प्रति हमें आश्वस्त करते हैं। तुलसी की भावुकता की विस्तृत चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल ने प्रतिपादित किया है कि रामचरितमानस में उन्होंने प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव किया है। इससे तुलसी के हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्वरूपों की भावना की क्षमता प्रकट होती है। उनके भाव निरूपण भाव चित्रण में पर्याप्त गहराई है। उन्होंने छोटे छोटे ऐसे संचारी भावों की स्वतंत्र व्यंजना की है जिनकी ओर अन्य कवियों का ध्यान नहीं गया है। इससे यह प्रकट होता है कि उन्हें मानवीय प्रकृति का सूक्ष्म ज्ञान था। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने बीच बीच में शास्त्रीय प्रश्न भी उठाए हैं और कहीं कहीं आचार्यों के परंपरागत निर्णयों से अपनी असहमति भी व्यक्त की है। उन्होंने तर्क देकर प्रमाणित किया है कि उत्साह का आलम्बन विजेतव्य शत्रु न होकर विकट या दुष्कर कर्म होता है। तुलसी के बाह्य चित्रण पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने थोड़े खेद के साथ बताया है कि उनमें वाल्मीकि और कालिदास के समान समग्र बाह्य सृष्टि से सहज रागात्मक संबंध जोड़ने वाली सहृदयता न थी, इसलिए उनके राम लक्ष्मण में प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों के प्रति वह हर्षोल्लास नहीं है जो वाल्मीकि के राम लक्ष्मण है। चित्रकूट के वर्णन में उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण और संश्लिष्ट योजना का परिचय अवश्य दिया है, किंतु इसका कारण उनका प्रकृति के रूप व्यापार में मग्न होना नहीं है, अपने आराध्य राम के स्वरूप में मग्न होना है। चित्रकूट की भूमि राम पद अंकित और अपने वन रघुवर बिहार थल होने के कारण तुलसी के लिए विशेष आकर्षण की वस्तु बन गए हैं। आचार्य शुक्ल को संतोष यह है कि तुलसीदास ने हिंदी के अन्य कवियों की भांति वस्तु वर्णन करते हुए वस्तु परिगणन शैली का उपयोग नहीं किया है। यही नहीं, उन्होंने भिन्न भिन्न व्यापारों में तत्पर पुरुषों की विशिष्ट मुद्राओं का भी बड़ा ही स्वाभाविक और बिंबात्मक चित्रण किया है। मारीच के पीछे सरसंधान किए हुए राम और राम की प्रतीक्षा में माथे पर हाथ रखकर दूर देखते हुए शबरी की मुद्राओं का उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात पुष्ट की है। तुलसी के अलंकार विधान की चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने उन्हीं अलंकारों का महत्व दिया है जो भावों को उत्कर्ष देने तथा वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया के अनुभव को तीव्र करने में सहायक है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पर्याय युक्ति, विभावना, असंगति, व्यतिरेक, मिलित, उन्मिलित, संदेह आदि अलंकारों को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विस्तृत व्याख्या के साथ प्रमाणित किया है कि गोस्वामी जी ने रूप, गुण, क्रिया और भाव को उत्कर्ष देने के लिए इनका प्रयोग किया है। तुलसी की भाषा का विवेचन शुक्ल जी ने बहुत संक्षेप में किया है। उन्होंने लक्षित किया है कि तुलसी की भाषा चलती हुई और मुहावरेदार है। उनकी वाक्य रचना निर्दोष है। उन्होंने पाद पूर्ति के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ऐसा लगता है कि तुलसी की कला के विवेचन पर आचार्य शुक्ल ने बहुत कम ध्यान दिया है। उनकी पूरी शक्ति तुलसी की भक्ति और शील निरूपण तथा भावुकता के विवेचन में ही लग गई है। जिस विस्तार और गहराई से उन्होंने जायसी की कला मर्मज्ञता का विश्लेषण किया है, वह विस्तार और गहराई यहाँ नहीं है। वस्तुतः उन्होंने तुलसी के महत्व के साक्षात्कार के लघु प्रयत्न के रूप में ही तुलसी गोस्वामी तुलसीदास की रचना की है, इसलिए मूल्यांकन में लाघवता स्वाभाविक है।